दी प्रिंट पॉड के इस अंक में आपका स्वागत है। मैं इंद्रजीत आपको सुना रहा हूं अपने साप्ताहिक कॉलम नेशनल इंटरेस्ट में लिखे शेखर गुप्ता का लेख। गुजरात चुनाव में भले ही बीजेपी का दावा काफ़ी मजबूत हो, लेकिन वह चाहेगी कि नंबर दो पर आप नहीं कांग्रेस रहे। शेखर गुप्ता दी प्रिंट के एडिटर इन चीफ हैं। वह लिखते हैं, नरेंद्र मोदी ने जनादेश हासिल करने की पहली कोशिश 2002 में की थी और तब से इन 20 वर्षों में गुजरात में ऐसा कोई चुनाव नहीं हुआ है जिसने राष्ट्रीय राजनीति को न प्रभावित किया हो। 2022 का चुनाव भी कोई अपवाद नहीं है। इस चुनाव का नतीजा कम से कम यह तो तय ही कर देगा कि 2024 में मोदी और भाजपा का मुख्य प्रतिद्वंद्वी कौन होगा और अगर उनके खिलाफ कोई गठबंधन बनता है तो उसका नेता कौन होगा। नतीजे आने में अभी एक सप्ताह बचे हैं। चुनावी राजनीति में चमत्कार तो हो ही सकते हैं। जैसा कि राजनीति और चुनावी आंकड़ों के जानकार योगेंद्र यादव ने 2007 में अनुमान लगाया था कि गुजरात में चमत्कार मुमकिन है, लेकिन तब या 2012 या 2017 में वैसा कुछ नहीं हुआ और सारे संकेत यही हैं कि 2022 में भी चमत्कार नहीं होगा। पिछले दो दशकों में केवल 2017 में ही कांग्रेस भाजपा को झटका देने के करीब पहुंच सकी, लेकिन उसके बाद से मोदी का कद बढ़ता गया है और उनके खिलाफ चुनौती कमज़ोर पड़ती गई है। तो फिर खबर क्या है? यह चुनाव बेरंग क्यों नहीं है और इसका नतीजा तय क्यों नहीं मान लिया गया है? इस सवाल का जवाब यह है कि अगले 12 महीने में गुजरात के अलावा जिन बड़े राज्यों कर्नाटक, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में चुनाव होने वाले हैं, वह 2024 की गर्मियों में होने वाली बड़ी जंग का मैदान तैयार कर देंगे। बाकी बचे चुनाव में कांग्रेस अगर शानदार प्रदर्शन करती है तब भी वह दो पुराने प्रतिद्वंदियों के बीच जंग की पुरानी कहानी ही दोहराएगी। इन चारों राज्यों में वोट सीधे मोदी के नाम पर नहीं डाले जाएंगे। वह और उनकी भाजपा ऐसे झटकों को उसी तरह से झेल लेगी जिस तरह 2019 में झेला था, लेकिन मोदी जब खेल में हों तो कहानी बदल जाती है। गुजरात विधानसभा का चुनाव दूसरे चुनावों से अलग है। यह एकमात्र ऐसा राज्य है जहां चुनाव में मोदी का सीधे दांव लगा है। यहां चुनाव मोदी के नाम के इर्द गिर्द इस कदर केंद्रित होता है कि कई लोग मौजूदा मुख्यमंत्री का नाम तक भूल जाते हैं। वैसे क्या आप उनका नाम बता सकते हैं? दिल पर हाथ रखकर बताइए, गूगल मत कीजिए। इसलिए गुजरात में मोदी की जीत हो तब भी जिस पक्ष ने उन्हें सबसे कड़ी चुनौती दी होगी उसे काफ़ी लाभ हो सकता है। या वैसा ही है जैसे किसी खेल में गोल्ड मेडल का हकदार तो तय हो और मुकाबला सिल्वर और ब्रॉन्ज मेडल्स के लिए हो रहा हो। इस बदलाव का श्रेय आम आदमी पार्टी को जाता है। अरविंद केजरीवाल ने वहाँ अच्छा प्रदर्शन किया तो वह मोदी और राहुल गांधी के अलावा सचमुच में राष्ट्रीय नेता के रूप में उभर सकते हैं और आप एक उभरती राष्ट्रीय ताकत बन सकती है। क्या वे कांग्रेस को पीछे छोड़कर नंबर दो बन सकते हैं? नहीं भी बने तो कोई बात नहीं। अगर वे सम्मानजनक रूप से तीसरे नंबर पर भी पहुंच गए या कोई भविष्यवाणी नहीं है, सिर्फ एक तर्क है, तो वे उभरती नई राष्ट्रीय ताकत माने जाएंगे और कांग्रेस ढलान पर है फिसलती मानी जाएगी, क्योंकि तब भाजपा गुजरात में कांग्रेस को लगातार पांचवी बार शिकस्त देगी। कांग्रेस हमेशा की तरह दूसरे नंबर पर भी आती है और अगर वह 2017 वाला प्रदर्शन नहीं दोहराती है तो वह लुप्त होती ताकत मानी जाएगी। तब नई पार्टी का सितारा बुलंद होता दिखेगा। यह भाजपा के लिए चिंता का कारण है। गुजरात के इस चुनाव में कांग्रेस की चर्चा कम होने के दो कारण हैं। एक तो यह कि कांग्रेस का राष्ट्रीय नेतृत्व, खासकर गांधी परिवार, उदासीन दिख रहा है। दूसरा और सबसे महत्वपूर्ण कारण यह है कि भाजपा अपनी नई प्रतिद्वंदी के मुकाबले पुरानी की बात कम ही कर रही है। बात से ज़्यादा यह देखिए कि वह कर क्या रही है। चुनाव अभियान से पहले कई महीनों से भाजपा के तमाम प्रवक्ता, नेता, सोशल मीडिया योद्धा और सबसे महत्वपूर्ण एजेंसियां केवल एक ही पार्टी आप पर सारा ध्यान केंद्रित किए थी। भाजपा पाक साफ होने के दावे के साथ भले इसका खंडन करे, लेकिन इस तथ्य को छुपाया नहीं जा सकता है कि आप ही उसके मुख्य निशाने पर है और जोर इस बात पर है कि उसे पनपने नहीं देना है। गुजरात में पनपने से पहले ही उसे कुचल देने की हड़बड़ी इतनी है कि वहां चुनाव कवर करने गए पत्रकार यह धारणा लेकर लौटे हैं कि भाजपा चाह रही है कि कांग्रेस बेहतर प्रदर्शन करे। वह खुद अच्छी जीत हासिल तो करना चाहती है, लेकिन यह भी चाहती है कि कांग्रेस बहुत खराब प्रदर्शन ना करे। दो पराजित प्रतिद्वंदियों में से वो अपने साथ बाउंडर लाने वाले प्रतिद्वंदी के मुकाबले अधिक पतनशील प्रतिद्वंदी को ज़्यादा बेहतर मानती है। सो फिलहाल भाजपा इसी उधेड़बुन में है। पिछले दो दशकों यानी मोदी युग की शुरुआत से इस राज्य की राजनीति पर निरंतर दो तथ्य हावी रहे हैं। एक तो यह कि भाजपा ने हमेशा जीत के साथ अपना वर्चस्व बनाए रखा है। दूसरे, कांग्रेस का 30 से 40 फीसदी के बीच का मजबूत वोट बैंक 2017 में या 41.4 फीसदी का था बना रहा है। इसका मतलब यह है कि अपने वर्चस्व के चरम पर भी भाजपा इस वोट बैंक में सेध नहीं लगा पाई है। उसने कांग्रेस को इस सीमा के नीचे स्थायी बंधक बना रखा है। अगर आप इस गत को तोड़ पाती है तो जो लड़ाई अब तक खंडकों और चौकियों से लड़ी जा रही थी वह मैदानी जंग में तब्दील हो जाएगी। इसलिए भाजपा केजरीवाल को लेकर राजनीतिक रूप से इतनी उन्मादी हुई जा रही है। चूंकि केजरीवाल नए हैं और गुजराती मतदाताओं ने उन्हें अभी परखा नहीं है, इसलिए उनके लिए काफ़ी गुंजाइश है। वह बिल्किस बानो, सार्वजनिक कोड़ेबाजी जैसे मामलों पर चुप रह सकते हैं, और फिर भी अगर उन्हें उभरती ताकत के रूप में देखा जाता है तो कांग्रेस के पक्के समर्थक मुस्लिम मतदाता उनके प्रति आकर्षित हो सकते हैं। उनमें से कुछ तो ज़रूर, केजरीवाल समान नागरिक संहिता, कट्टर राष्ट्रवाद, नोटों पर लक्ष्मी गणेश की तस्वीर छापने की बात कर सकते हैं। हम इतने वर्षों से कहते आए हैं कि केजरीवाल ने अपनी राजनीति को जिस तरह विचारधारा से मुक्त रखने का फार्मूला अपनाया है वह अंततः टिकाऊ नहीं साबित होगा। वैसे वह अंततः अभी नहीं आया है। आज विचारधारा के बोझ से मुक्त रहना उन्हें हर किसी का, खासकर भाजपा का पाठ पढ़ने की गुंजाइश देता है। यह खास तौर से मोदी और शाह के लिए चिंता का कारण होना चाहिए और है भी। कांग्रेस के मामले में तो विचारधारा की रेखाएं साफ हैं, लेकिन आपका मामला कुछ उलझाऊ है। अगर आप राहुल गांधी की पदयात्रा पर नज़र रख रहे हों तो साफ दिखेगा कि वह 2024 की चुनौती को बुनियादी तौर पर विचारधारा की जंग बनाने की कोशिश कर रहे हैं। सावरकर एक महान राष्ट्रवादी थे या एक कायर पिट्ठू, भारत जोड़ो यात्रा के पीछे विचार यही है कि भाजपा की विचारधारा ने देश को बांट दिया है। मोदी और शाह के लिए इससे लड़ना आसान है, लेकिन आप उससे कैसे लड़ेंगे जो आपकी ही बातों को आपके खिलाफ इस्तेमाल कर रहा हो और मुफ्त बिजली पानी जैसी रेवड़ियां खुले हाथों से बांटता फिर रहा हो। आपके साथ अपने मुकाबले को भाजपा स्वच्छ बनाम भ्रष्ट के द्वंद में बदलने की कोशिश करती रही है, लेकिन उसे दो मुश्किलों का सामना करना पड़ा है। पहली यह कि तमाम FIR, खुलासे, आरोपित खबरें, गुप्त कैमरे, जेल और दूसरी जगहों के वीडियो आपके समर्थकों को इस संदेश में यकीन नहीं दिला पा रहे हैं कि आप भ्रष्ट हैं। दूसरी यह कि यह तर्क गले नहीं उतरता कि भारत में अब तक जो राजनीति हुई है उसमें भाजपा की राजनीति सबसे साफ सुथरी है। मिसाल के तौर पर चाहे यह गुजरात के मोरबी में हुआ हादसा हो या दिल्ली में भाजपा के अधीन चले भ्रष्ट और अक्षम नगर निगमों के कारण पैदा हुआ संकट हो। तीसरे, ऐसा लगता है कि संसाधन और प्रचार क्षमता के मामले में कांग्रेस के विपरीत आप ही भाजपा का पूरा मुकाबला कर सकती है। वह कांग्रेस के उलट है जो कि न केवल सहमी सहमी दिखती रही है बल्कि चुनाव में जी जान लगाकर भिड़ने से कतराती रही है, चाहे यह पंजाब का चुनाव ही क्यों ना रहा हो। पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी के अलावा आप ही आज भाजपा के मुकाबले में खड़ी दिखती है। इसलिए केजरीवाल गुजरात में अगर दूसरे नंबर पर आते हैं तो यह भाजपा के लिए हार के समान ही होगा, लेकिन अगर वह तीसरे नंबर पर भी आते हैं तो उसे 15% के आसपास वोट मिलते हैं तो यह 2024 के लिए भाजपा को चिंता में डाल सकता है, खासकर तब जब आप दिल्ली में MCD चुनाव जीत लेती है जिसकी संभावना गुजरात के मुकाबले ज़्यादा है। इसलिए गुजरात का यह चुनाव 2002 के बाद हुए चुनावों के मुकाबले और जैसा भी हो मगर बेरंग नहीं है। दी प्रिंट पॉड के इस अंक को सुनने के लिए धन्यवाद। एक नए अंक के साथ फिर मिलेंगे। नमस्कार।